आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मेलबर्न स्थित कलाकार सेंथिल वेल के साथ, जो यूं तो इंजीनियर हैं लेकिन फोक आर्ट में उनका खास रुझान है। वो स्वयं तंजौर लोक चित्रकला करते हैं और उन्होंने इस कला को पारंपरिक रूप से भारत में अपने गुरु से सीखा जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। मेलबर्न में उन्होंने एक आर्ट गैलरी में भारत की लोक चित्रकला की प्रदर्शनी आयोजित की है। उनका कहना है कि वो विश्व भर में भारत की लोक कला के प्रति जागरूकता जगाना चाहते हैं। उनसे इसी प्रदर्शनी को लेकर कुछ बातचीत की और जानना चाहा कि लोक चित्रकला के प्रति जागरूकता जगाना कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो उन्होंने बताया,
बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ना, पहले जब मैंने इसको रिसर्च किया था, मैंने सोचा कि 10-15 फोक आर्ट्स हैं हम इंडिया में, बट जैसे जैसे मैं इसको रिसर्च करता गया, मोर देन 50 फोक आर्ट्स मुझे मिले। अभी जब मैंने आर्टिकल लिखा था उसमें 50 का लिखा, पर अभी तो अभी ऑलमोस्ट है 60-70 फोक आर्ट्स।
तो यानी वो कहीं लुप्त होती जा रही हैं, उनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं।
हाँ बिल्कुल, तो अभी अगर देखेंगे तो कुछ आर्ट के लिए तो बस 5-6 फैमिलीज रह गए हैं दुनिया भर में, तो वो बहुत सैड सिचुएशन है।
हाँ हाँ, तो ये लुप्त होती हुई जो कला है इसको बराबर बनाए रखना कितना महत्व है।
देखिए, फोक आर्ट तो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है ना। हाँ. बोलते हैं उसको सांस्कृतिक पहचान, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे जब फोक आर्ट बोलते हैं तो उसमें फोक आर्ट में आर्ट होता है, विजुअल आर्ट होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, ये सब मिलके हमको हमारा कल्चरल आइडेंटिटी दिखाता है। तो हमारा इंडिया का एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो हम फोक आर्ट के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। अभी क्या हुआ कि काफी सारा म्यूजिक का और डांस का तो कुछ
हो रहा है,
हो रहा है, बट आर्ट का काफी कम हो रहा है।
जी,
तो ऐसे ही जस्ट स्लोली डिसअपीयरिंग।
तो वही है कि विरासत को संभालना बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर एक बात ये जानना चाहूंगी कि लोक कला के बारे में थोड़ा बहुत परिचित हैं वो तो पहचान लेंगे, लेकिन जब हम कोई भी पेंटिंग देखते हैं तो कैसे पहचाने कि ये फोक आर्ट है और ये शायद किसी आर्टिस्ट की कल्पना है।
फोक आर्ट में अगर इंडिया के फोक आर्ट देखेंगे तो उसमें बेसिकली इंडियन कल्चर का जो स्ट्रॉन्ग थीम देखेंगे तो वो हिंदू मिथोलॉजी से बेस्ड होंगे। जरूरी नहीं है, बट 90% जो भी हमारा जो फोक आर्ट्स को जो थीम्स हैं वो हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर होते हैं, क्योंकि इफ यू गो बैक, फोक आर्ट्स 3,000-4,000 years पुराने हैं, तो उस समय तो वी डिडंट हैव एनी अदर रिलीजन, तो मेनली इट वाज हिंदू काइंड ऑफ प्राइमरी। तो जो जनरेशन जो पास ऑन होता है
जी।
तो बेसिकली, बट अगर बाद में देखेंगे तो काफी सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फोक आर्ट्स में आया है।
अच्छा।
इंक्लूडिंग बैंजोर पेंटिंग में, स्टाइल में देखेंगे तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफी आया है, मुगल का इन्फ्लुएंस काफी आया है, तो फोक आर्ट्स हैज बीन वेरी अडैप्टिव टू अदर कल्चर्स, बट सब मिलके वो इंडियन फोक आर्ट बनता है ना, इट हैज गॉट ऑल द इन्फ्लुएंस।
जी, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो फोक आर्ट है या लोक कला है उसमें एक स्टोरी टेलिंग होती है, कोई ना कोई बात कही जा रही होगी, या माइथोलॉजी से रिलेटेड कोई स्टोरी होगी, या कोई और सामाजिक परिदृश्य को भी दिखाया जा सकता है फोक आर्ट में।
बिल्कुल, क्योंकि अगर जब एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे अगर एक डिसिप्लिन लाना था, कि अगर कुछ ऑर्डर लाना था, तो उसका मैसेज अगर सब जगह जनों तक पहुंचना है तब कुछ मीडियम चाहिए, है ना। क्योंकि सभी को एजुकेशन नहीं था, सभी के पास एजुकेशन नहीं था, तो फोक आर्ट्स वाज द मीडियम जहां पे स्टोरीज होती थी, उसमें बताया जाता था कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें म्यूजिक, आर्ट और डांस, ये सब मिलके, इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, कि पीपल उसको एंटरटेन करते थे और उससे समझते कि ये करना सही है ये करना गलत है। तो
हाँ
ये सब फोक आर्ट वॉज अ वे। अभी हम ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ वेज ऑफ एंटरटेनमेंट, बट तब बेसिकली फोक आर्ट वॉज अ वे ऑफ एंटरटेनिंग, ऑल्सो इज एजुकेशन, अ टूल ऑफ एजुकेशन।
अलग अलग जो सामाजिक स्थिति होती है, माइथोलॉजी है, और अगर हम पेंटिंग की ही बात कर रहे हैं तो वो जो सिमिलैरिटी होती है, एक फोक आर्ट की जो पहचान होती है, उसको किस तरह से पहचाने?
तो अगर पेंटिंग का स्टाइल टेक्निक देखेंगे ना, तो उसमें एक बहुत कॉमन थीम होता है कि वो नेचुरल कलर कलर से बनता है। और इफ यू लुक एट नॉर्थ में देखेंगे तो उनका काफी सारा स्टोन कलर्स यूज करते हैं लोग।
अच्छा जी।
फॉर येलो दे यूज लॉट ऑफ येलो, येलो हरिताल पत्थर करके एक स्टोन होता है, उसको घिस घिस के वो निकालते हैं येलो। और काला रंग के लिए वो ये होता है ना कार्बन,
हाँ
उसको अरबिकम मिक्स करके उसको ब्लैक कलर निकालते हैं।
अच्छा।
और व्हाइट का जो शेल्स, सी सी का जो शेल्स होता है उससे निकालते हैं व्हाइट। तो ऐसे देखेंगे तो काफी सारा नेचुरल स्टोन्स और नेचुरल वेजिटेबल कलर्स का इस्तेमाल करके
हाँ
कलर्स आते हैं। तो जो भी देखेंगे तो आप पूरा प्राइमरी कलर्स देखेंगे आपको, और मिक्सिंग बहुत कम होते हैं। जो कलर्स हम देखते हैं वो काफी वाइब्रेंट होते हैं।
जी। और जो उनका जो मटेरियल होता है जिस पे करते हैं, वो भी बहुत कॉमन रहेगा?
तो उसमें अगर देखें तो उसमें काफी सारा एवोल्यूशन है। जगह अगर आप ईस्ट पे जाएंगे तो वहां पे उन्होंने तब तक तो पेपर नहीं था, क्लॉथ नहीं था, तो उनका तो शुरुआत हुआ था पाम लीव्स में, लीव्स के ऊपर वो करते थे।
हाँ
उसके बाद ऑफ कोर्स पेपर आया, क्लॉथ आया, उसके बाद सॉरी क्लॉथ आया था, क्लॉथ के बाद अभी कैनवास में भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे सब स्टेट, इंडिया के सब स्टेट्स हैं, सभी जगह एक एक डिफरेंट स्टाइल के फोक
हाँ
आर्ट्स हैं।
मैं यही
पर
आपसे पूछने जा रही थी कि समानता तो हो गई, लेकिन हर स्टेट की एक अलग पहचान बनती है फोक आर्ट में। तंजोर पेंटिंग को अगर मधुबनी या गोंड लोक चित्रकला से अगर कंपेयर करें, तो कहाँ पर हमें अंतर दिखेगी? समानता तो आपने बताई कि एक स्टोरी टेलिंग होती है, और हो सकता है उसमें जो कलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं समानता हो सकती है उनकी, तो अलग कहाँ पर होगा दोनों में?
अलग मतलब अगर 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 तंजोर पेंटिंग की बात करेंगे तो तंजोर पेंटिंग प्रॉब्ली नया फोक आर्ट है, इट्स मोर मॉडर्न फोक आर्ट
अच्छा जी।
मधुबनी और गोंद से कंपेयर करें। मधुबनी 3,000 से ऊपर पुराना फोक आर्ट है,
हाँ
गोंद भी
हाँ
काफी पुराना है,
जी।
तंजौर हम बोल सकते हैं कि 300-400 वर्ष पुराना है। तो तंजौर और अगर आप मधुबानी को अगर कंपेयर करेंगे तो मिथोलॉजी का स्टोरीज काफी रिसेम्बलेंस होगी, ये
हाँ हाँ
कृष्णा का स्टोरीज
जी।
और रामलीला जो भी हमारे हिंदू मिथोलॉजी के हैं, जो काफी रिसेम्बलेंस देख सकते हैं। पर तंजौर में क्या है कि उन्होंने कुछ मॉडर्न टेक्निक्स इन्वॉल्व किए, जहाँ का मुगल का इन्फ्लुएंस है और वेस्टर्न इटालियन रिलीफ वर्क का इन्फ्लुएंस है काफी, तो वो सब तंजौर में देख सकते हैं आप, जो पहले नहीं था इंडियन पेंटिंग्स में। और मधुबनी और अगर गोंद का कंपेयर करेंगे तो गोंद काफी ओल्ड है, पूरा ट्राइबल स्टोरीज का इंफ्लुएंस नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ। तो गोंद में काफी एनिमल्स और बर्ड्स और नेचर
अच्छा।
का डोमिनेंस ज्यादा होता है। तो यू कैन सी द स्टोरी, क्योंकि ट्राइब्स ट्राइबल से हो गया मोर मॉडर्न लाइक मधुबनी, और उसके बाद हो गया मोर मॉडर्न लाइक तंजावर और बाकी जो स्टाइल्स हैं। इट्स लाइक अ ट्रांजिशन
जी
एवोल्यूशन ऑफ फोक आर्ट्स।
जी तो यही समझ सकते हैं कि ये जो फोक पेंटिंग होती है उसमें कोई ना कोई कहानी रहेगी, वो माइथोलॉजी की हो सकती है या वो उस समय के समाज को, वहाँ का कल्चर क्या था। ये तो हमारी संस्कृति का इतिहास है जिसको संभालना तो बहुत ही आवश्यक है, और उसके बारे में लोगों को बताना बहुत आवश्यक है।
एब्सोल्युटली बिल्कुल।
जी
अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में जो है ना काफी इन्फ्लुएंस था पेंटिंग में, लाइक पटचित्रा था, कालीघाट पेंटिंग्स था,
जी
पत्रा तसर पेंटिंग, इसी तरह वहां से ईस्ट का इन्फ्लुएंस था। और यहाँ पे अगर इफ यू कम टू राजस्थान, वो एक मैसिव हब था आर्ट के लिए, फोक आर्ट्स के लिए। काफी सारा सपोर्ट मिला किंग्स उस तरफ, जब
हाँ
राजा थे ना,
जी।
तो उन्होंने काफी सारा सपोर्ट दिया। जब ये कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ तब क्या हुआ कि उनको आर्टिस्ट को कुछ सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो दे स्टार्टेड लीविंग। तब से शुरू हुआ डिक्लाइन हमारा फोक आर्ट्स का। सो इफ यू सी आवर पीक, हमारा पीक था अराउंड 16th to 18th century, उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा अभी जस्ट गिरता जा रहा है। सो इट्स जस्ट बिकमिंग डिसअपीयरिंग आर्ट।
जी, लेकिन महसूस होता है कि अब कुछ कुछ जागरूकता भी है अपनी संस्कृति के प्रति लोगों के मन में। पेंटिंग्स के लिए तो खास तौर से अब ये दिखने लग गया है कि रुझान है उस तरफ। और ऐसे में आपने ये जो प्रदर्शनी लगाई है, इससे मुझे पूरी उम्मीद है न सिर्फ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए भी, वो और अधिक उसको पहचानेंगे और उसको स्वीकारेंगे भी।
ये हमारी थोड़ी सी ट्रायल कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने पहला ऑफ कोर्स मुंबई में शुरू किया था ये एग्जीबिशन, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में डाल रहे हैं,
जी
और हमारा प्लान है कि यूएस में भी एक जुलाई अगस्त में प्लान कर रहे हैं, मैं सिडनी और पर्थ में भी प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से।
बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका, और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और सेंथिल जी, आज आपने जो समय निकाला है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
थैंक यू सो मच।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।